समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, स्टूडियो घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। शतावाधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और उन विशिष्ट व्यक्तित्व को भी हम करेंगे याद जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिवस। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं अतहर सईद और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
Hello, Athar. Hello and good afternoon. You're tuned to Parikrama on 100.1 FM. I'm Abhishek Mukhopadhyay. With me today is my co-host, Athar Saeed. And for you, we have a selection of news, a discussion segment, Dateline India, reports, capsules, business tributes, and much more. All these over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first.
Bilkul. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्दुल मजीद तबून के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगी।
5G rollover expected to inject $450 million into Indian economy by 2040, says Union Communications Minister Jyotiraditya Sindhya.
बढ़ते प्रदूषण के कारण राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सभी प्रकार के पटाखों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया।
United States to send advanced missile defense system to Israel.
और भारत वर्ष 2025 में ISSF जूनियर विश्व कप निशानेबाजी की मेजबानी करेगा।
And now, Athar, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today, we will talk about the World Standards Day. Well, World Standards Day is celebrated every year on October 14th, that is today. The day is also observed as International Standards Day, aims at educating policymakers, consumers and the business about the value and significance of standardization. World Standards Day 2022 is observed by various organizations, including government bodies across the world. They plan a variety of events to observe the day. Well, World Standards Day underscores the essential role of standardization in fostering global cooperation and ensuring equality, safety, reliability across industries. In 2024, the focus on advancing health equity through standards highlights how unified guidelines continue to address pressing global challenges and promote a better, more equitable world. And every year, World Standards Day is marked on October 14th. Individuals and organizations are commemorated for their participation in the production and implementation of international standards. This aims to emphasize the role that standardization plays in enhancing international trade and safety, as well as quality of life. And World Standards Day takes a theme every year in line with wide objectives, such as the Sustainable Development Goals. And in 2024, advancing health equity through standards that support digital transformation and climate change challenges comes at the top of the list.
अभिषेक, विश्व मानक दिवस का उद्देश्य मानकों के महत्व को उजागर करना है और ये दिन मानक बनाने वाली संस्थाओं जैसे कि ISO और अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के योगदान को मान्यता देता है। मानक न केवल उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं बल्कि वैश्विक व्यापार को भी सरल बनाते हैं। इस दिन विभिन्न कार्यक्रम और जागरूकता अभियान आयोजित किए जाते हैं ताकि लोगों को मानकों के लाभ के बारे में जानकारी मिल सके। विश्व मानक दिवस का उद्देश्य मानक निर्माण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उनके महत्व को समझना है। ये उपभोक्ताओं, व्यापारियों और उद्योगों को मानकों की उपयोगिता के बारे में जागरूक करने का माध्यम है और साथ ही ये मानक बनाने वाली संस्थाओं की भूमिका को भी उजागर करता है।
Yes, so Athar, why do we celebrate World Standards Day? Well, each year on 14th of October, the members of the IEC, ISO and ITU celebrate World Standards Day, which is a means of paying tribute to the collaborative efforts of thousands of experts worldwide who develop the voluntary technical agreements that are published as international standards. And also, why are world standards so very important? Well, addressing all this and more international standards mean that consumers can have confidence that the products are safe, reliable and of good quality. ISO's standards on the road safety, toy safety, and secure medical packaging are just a few of those that help make the world a safer place. And while the concept of recognizing this day began in 1946, the first formal celebration of World Standards Day took place in 1970, initiated by Farooq Santa, then president of the International Electrotechnical Commission, IEC. And the day aims to raise awareness about the importance of standardization in promoting trade, ensuring safety, and enhancing quality across various industries. The significance of World Standards Day lies in its role in fostering global cooperation and facilitating uniformity in measurements and technologies, which is essential in today's interconnected world. And the observance encourages stakeholders to recognize the contributions of standards to economic growth and societal well-being.
और अभिषेक, आइए अब ये जानते हैं कि मानक क्यों महत्वपूर्ण हैं। तो मानक उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और दक्षता को सुनिश्चित करते हैं। वे व्यापार के लिए नियम और प्रक्रियाओं को स्थापित करते हैं, जिससे उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ता है। और इसके अलावा मानक वैश्विक व्यापार को भी सरल और सुरक्षित बनाते हैं। उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज इस विषय पर कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS द्वारा लगभग 732 उत्पादों के लिए 150 से अधिक गुणवत्ता नियंत्रण आदेश अधिसूचित किए गए हैं। नई दिल्ली में विश्व मानक दिवस कार्यक्रम के अवसर पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मानकों के कार्यान्वयन को सरकार द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।
माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स हमने किया है, बहुत बड़ी मात्रा में किया है। 174 तक QCO है अभी हमारा। तो ये सब देखते हुए आगे भी हम भारत का जो स्टैंडर्ड है उसके लिए दुनिया का भी स्वीकारता मिलना चाहिए और भारत में जो कंज्यूमर्स है वो कंज्यूमर्स में BIS मार्क के प्रोडक्ट को ही परचेज करना, ऐसे एक जागृति अवेयरनेस क्रिएट करने का हम ऐलान किया है, वही हमारा उद्देश्य है।
बिल्कुल अभिषेक, मानक का उद्देश्य यही है कि हम जो मानक चिन्ह है जो वस्तुओं पर छपे होते हैं उनको देखकर ही वस्तुएं खरीदेंगे तो कहीं ना कहीं हम संतुष्टि पाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो हॉलमार्क का निशान अगर आप देखेंगे तो शुद्धता का प्रमाण हो सकता है। ISI का मार्क देख करके आप चीजें तो कहीं ना कहीं आप मार नहीं खाएंगे, धोखा नहीं खाएंगे।
एब्सोल्युटली। सो लिसनर्स, लेट अस सेलिब्रेट द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे by creating awareness in this world about the importance of standards and quality. Happy World Standard Day.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं की ओर जाने का और उनसे ये जानने का कि उनके पास क्या कुछ विशेष है। और इस क्रम में हम सबसे पहले चलेंगे अपने चेन्नई संवाददाता के पास।
Yes, and the Tamil Nadu Food Processing and Agri Export Promotion Corporation has filed an application seeking geographical indication for 3 food products from the state. They are Panan Garkandu from Ramanathapuram, Sival from Kovilpatti and Patarai Karuvadu from Ramanathapuram. The NABARD Madurai Incubation Forum was the facilitator for filling the registry. CEO of NABARD K. Ganesha Murthy said that the state has a lot of regional food products which needs recognition and said that the forum had been actively implementing various initiatives to promote products that had received GI tags. We have more from a correspondent.
Tamil Nadu is a key area for the cultivation of palmyra trees. The dry, arid climate and sandy soil provide a conducive atmosphere for palmyra trees. Known locally as the tree of life, the palmyra plays an integral role in the district's rural economy. Panangarkandu is the crystal palm sugar and has been produced in this region for more than 300 years. Patarai Karuvadu is a traditional dry fish preparation method that involves burying fish in mud after smearing them with turmeric powder in the coastal regions of Rameswaram. The process of making them is called padam, meaning preserving. It is typically made from kingfish, ribbon fish, leather skin fish and mackerel. Kovilpatti Sival is a traditional deep-fried snack known for its crispy texture and unique flavor. It is primarily made from rice flour seasoned with cumin, ajwain, which give a distinct aroma. Joy, Akashwani, reporting for Parikrama from Chennai.
Yes, from that Tamil Nadu Food Processing and Agri Export Promotion Corporation report from Joy from Chennai, we now go over to Delhi.
बिल्कुल अभिषेक, भारत कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ की विश्व दूर संचार मानकीकरण सभा यानी WTSA की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। भारत पहली बार इसकी मेजबानी कर रहा है। श्री मोदी इंडिया मोबाइल कांग्रेस का भी उद्घाटन करेंगे। आइए सुनते हैं इस पर यह खास रिपोर्ट।
10 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम के दौरान मौजूदा और भविष्य में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही ये भी देखा जाएगा कि कैसे 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा, साइबर सुरक्षा और क्वांटम टेक्नोलॉजी का लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस कार्यक्रम में 190 से अधिक देशों के 3000 से अधिक वैश्विक नेता और तकनीकी विशेषज्ञ भाग लेंगे। इस सभा का आयोजन 4 साल में एक बार किया जाता है, जो वैश्विक दूरसंचार मानकों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में 5G और 6G नेटवर्क की प्रगति और वैश्विक तकनीकी परिदृश्य में देश के बढ़ते कदम की दिशा में इस कार्यक्रम का आयोजन एक अहम कदम माना जा रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
चेन्नई और उसके बाद दिल्ली के बाद अब चलते हैं लेह लद्दाख।
इन लद्दाख द हिमांक प्रोजेक्ट ऑफ द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन is currently implementing multiple infrastructural development initiatives. The project also ensures year-round access to military bases and outposts in the Siachen Glacier, along the line of actual control and in areas near Pangong Lake. We have more from a correspondent.
Project Hima is an initiative of Border Roads Organization under Ministry of Defense. Established in 1985, it aims to develop roads infrastructure in Ladakh and parts of Jammu and Kashmir as part of India-China Border Roads Project. Recently, 11 projects in Ladakh were dedicated to the people by Raksha Mantri Rajnath Singh on the auspicious occasion of Dasera. Several more projects are expected to be completed in the coming months. Some of these projects are to be carried out by Himang. The project maintains airfields and major passes situated at altitude ranging from 15,000 to 19,300 feet on the highest motorable roads. Chief Engineer Vishal Srivastava mentioned that the Mod airfield and several other key projects are nearing completion within the next 2 months.
प्रोजेक्ट हिमांक जो ईस्टर्न लद्दाख में डिप्लॉयड है, हमारे बहुत अहम प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। जो एयरफील्ड बुद्ध न्योमा में बन रही है वो भी हम अगले 1-2 महीने के अंदर कंप्लीट करेंगे और वहाँ पे एयरफोर्स के बड़े से बड़े एयरक्राफ्ट का ट्रायल लैंडिंग होगा। इसके अलावा जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है चाइना के साथ, उसके पैरेलल चुशुल दुमती फुकचे देमचौक 128 किलोमीटर लंबी रोड डेवलप हो रही है, जो इस साल एंड तक हम कंप्लीट कर देंगे। इसके अलावा खलसा रगम शोक, इसके ऊपर भी नेशनल हाईवे डबल लेनिंग NHDL स्पेसिफिकेशंस की रोड बन रही है, जो कि आने वाले कुछ सालों में कंप्लीट हो जाएगी। पिछले कुछ समय पहले हमने जो रोड है दुर्बुक तांग से लुकुंग, जो पेंगोंगसो तक जाती है, उसको भी NHDL स्पेसिफिकेशंस में कंप्लीट किया है, जिसकी वजह से आप देखिए लेह से पेंगोंगसो जाना और आना एक दिन के अंदर आसानी से कंप्लीट हो जाता है। जो नेशनल हाईवे NH3 जो मनाली से सरचू होते हुए पांग होते हुए तांगलांगला पास क्रॉस करके लेह पहुंचता है, उसको भी हमने NHDL स्पेसिफिकेशंस पे डेवलप कर दिया है।
प्रोजेक्ट हिमा मेंटेन लेह मनाली नेशनल हाईवे एक्सेस टू इंश्योर स्मूथ रोड कम्युनिकेशन। सिंस इट्स एस्टेब्लिशमेंट इट हैज अर्न द निकनेम माउंटेन टिमर्स फॉर इट्स नोटेबल रोल इन कंस्ट्रक्टिंग रोड्स इन मोस्ट चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। फॉर परिक्रमा, यंगचंद वर्मा फ्रॉम लेह-लद्दाख।
भारत और नेपाल लगायत, देश विदेश में रहने वाले नेपाली भाषा समुदाय का सबसे बड़ा पर्व टीका दशहरा विजयादशमी के दिन 12 अक्टूबर से आरंभ हो गया है। इस पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अशोक चौरसिया।
गोर्खालैंड क्षेत्रीय प्रशासन GTA दार्जिलिंग पहाड़ सहित पश्चिम बंगाल में गतकाल शोभा यात्राओं के साथ 9 दिनों के दुर्गा पूजा के पश्चात प्रतिमाओं का विसर्जन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया है। भारत व नेपाल लगायत देश विदेश में रहने वाले नेपाली भाषी समुदाय का सबसे बड़ा पर्व टीका दशई विजयादशमी के दिन 12 अक्टूबर से आरंभ हो गया है तथा नए परिधानों व जातीय वेशभूषा में यह पर्व 17 अक्टूबर तक यानी पूर्णिमा तक चलेगा। पूरे क्षेत्र में एक अद्भुत उत्साह और उत्सव का माहौल दिखाई दे रहा है। बस स्टैंडों पर आने जाने वाले लोगों की भीड़ है, यात्रियों की तुलना में वाहन कम दिख रहे हैं। कुछ जगहों पर लोगों को वाहन के लिए घंटों इंतजार भी करना पड़ रहा है। दार्जिलिंग जिले के पानी टंकी कांकड़ भीटा व पशुपति के भारत नेपाल सीमा पर आने जाने वाले लोगों का काफी चहल पहल है। परिक्रमा के लिए अशोक चौरसिया, आकाशवाणी करशंग।
And now we will take on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
In today's episode, we remember the great freedom fighter and one of the founding members of Gadar movement, Lala Hardayal, who was born on 14th October in 1884 in Delhi. A widely read person, Hardayal turned down a career in the Indian civil service, and with his intellectual acumen, inspired many expatriate Indians living in Canada and the USA to fight for India's independence movement.
He was associated with Shyam Krishna Varma and Bhikaji Kama.
Lala Hardayal studied in the Cambridge Mission School and received his bachelor's degree in Sanskrit from St. Stephen's College in Delhi. In 1905, he received two scholarships of Oxford University for his higher studies in Sanskrit. However, in a letter to the Indian sociologist published in 1907, he started to explore anarchist ideas, arguing that our object is not to reform government, but to reform it away, leaving, if necessary, only nominal traces of its existence.
The letter led him to being put under surveillance by the police. Later that year, he gave up the prestigious Oxford scholarships and returned to India in 1908 to live a life of austerity. But in India too, he started writing harsh articles in the leading newspapers. When the British government decided to censor his works, Lala Lajpat Rai advised him to leave and go abroad.
He travelled through France and Germany, disseminating anti-British propaganda and lauding Western science and political philosophy as holding the key to a successful anti-colonial struggle. He moved to the United States in 1911, where he became involved in industrial unionism.
Basant Kumar Biswas's attempt on the life of the Indian Viceroy, Lord Harding, on 23rd of December 1912, had a major impact upon Hardayal. The Ghadar Party was formed on November the 1st, 1913, with Hardayal as its guiding spirit. In April 1914, he was arrested by the United States government for spreading anarchist literature and fled to Berlin, Germany.
In Berlin, he became instrumental to the formation of the Berlin Committee and cooperated with the German Intelligence Bureau for the East to fight against the British. Sayyid Fazlul Hasan, known by his pen name Hasrat Mohani, who coined the independence slogan Inqilab Zindabad in 1921.
Inqilab ek ladai hai, zulm aur nainsafi ke khilaf.
Inqilab ek hathiyar hai, aadmi par aadmi ka shoshan rokne ke liye.
Inqilab ek elan hai, desh ke naujawanon ko ekjut karne ke liye.
Born on 14th of October in 1875 in Unnao district of Uttar Pradesh,
together with Swami Kumaranand, he is regarded as the first person to demand complete independence for India in 1921 at the Ahmedabad session of the Indian National Congress.
Hasrat Mohani participated in the struggle for Indian independence and was jailed in 1903 for many years by the British authorities. He was a member of the Indian National Congress for many years and also joined the All India Muslim League, serving as its president in 1919.
He opposed the partition of India after the declaration of the partition plan on 3rd of June 1947. Mohani resigned as a member of the All India Muslim League, and when the division of the country occurred, he chose to live in independent India.
Mohani became a member of the Constituent Assembly of India but never accepted any government allowance or stayed at official residences. Instead, he stayed in mosques and used to go to the parliament in a shared tonga.
Maulana Hasrat Mohani died on 13th May 1951 in Lucknow. We salute his unwavering dedication to the cause of Indian independence.
And in some more news, US-based economist Darren Ace Moglu, Simon Johnson and James Robinson have won the 2024 Nobel Prize in Economics. It is for the groundbreaking research on how institutions shape prosperity. The Royal Swedish Academy of Sciences praised the work for highlighting the role of strong societal institutions in fostering economic growth, reducing inequality, and improving the rule of law. The award recognizes their contributions to understanding how institution quality impacts global development. And the prestigious award, formerly known as the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences, in memory of Alfred Nobel, is the final prize to be given out this year and is worth 11 million Swedish crowns, about 1.1 million US dollars. A.S. Moglu and Johnson are at MIT, while Robinson works at the University of Chicago. This year's laureates have provided new insights into why there are such vast differences in prosperity between nations. And one important explanation is persistent differences in societal institutions. By examining the various political and economic systems introduced by European colonizers, Darren Ace Moglu, Simon Johnson, and James Robinson have been able to demonstrate a relationship between institutions and prosperity, and they have also developed a theoretical tools that can explain why differences in institutions persist and how institutions can change. And moving on to some sports news now.
बिल्कुल भारत अगले वर्ष ISSF जूनियर विश्व कप की मेजबानी करेगा. अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल परिसंघ के अध्यक्ष लुसियानो रोजी ने इसकी पुष्टि की है. विश्व कप फाइनल से पहले वे कल नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने विश्व में निशानेबाजी की बढ़ती लोकप्रियता में भारत के योगदान की सराहना की. उन्होंने कहा कि भारत न केवल अपने प्रतिभाशाली निशानेबाजों बल्कि खेल बुनियादी ढांचे के विस्तार की अपनी प्रतिबद्धता के कारण निशानेबाजी जगत की एक प्रमुख ताकत है. भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के प्रमुख कलिकेश नारायण सिंह देव भी इस अवसर पर मौजूद थे.
Yes, and in some business news today, domestic benchmark indices today edged higher. The BSE Sensex surged over 590 points, while the Nifty 50 reclaimed 25,100 level. The Sensex climbed 592 points, or 0.7%, to close at 81,973, and the Nifty ended with an uptick of 164 points, or 0.6%, to settle at 25,128.
और अब समय है उन व्यक्तित्व को याद करने का अभिषेक जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिवस. इस क्रम में पहले हम बात करेंगे पुण्यतिथि की और सबसे पहले हम याद करेंगे शोभा नायडू को, जो कि भारत की प्रमुख कुचिपुड़ी नर्तकियों में से एक थी. एक नृत्य गुरु के रूप में शोभा नायडू ने भारत और विदेशों के कई छात्रों को प्रशिक्षित किया. अपनी नृत्य कला से उन्होंने देश ही नहीं विदेशों में भी सराहना पाई. शोभा नायडू ने अमरीका के कई शहरों और ब्रिटेन समेत कई देशों में प्रस्तुतियां दी. शोभा नायडू को पद्मश्री के अतिरिक्त नृत्य चूड़ामणि पुरस्कार और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
Jaladi Raja Rao passed away on this day in 2011. He was a writer, playwright and lyricist in Telugu cinema. He entered the realm of films as a lyricist for the movie Pallesema in 1976. His debut song Churata Kau Jarutadi Situku Situku is tuned by K.V. Mahadevan. He wrote several social, philosophical, patriotic and folk songs in Telugu movies. His song consists of only Telugu words from various regions of Andhra Pradesh. And also Sir Cliff Richard, born Harry Roger Webb, was born on this day in 1940. He is a British singer and actor. He has a total sales of over 21.5 million singles in the United Kingdom. And as of 2012, was the third top-selling artist in UK singles chart history, behind the Beatles and Elvis Presley. His 1958 hit single, Move It, is often considered Britain's first authentic rock and roll song. Let's listen to it.
Pretty baby, let's move it or groove it. Shake a baby, shiver, honey, please don't lose. It is rhythm that gets into your heart and soul. And let me tell you, baby, it's called rock and roll. Well, they say it's gonna die, but honey, please let me use it. And I they just don't know what's it gonna do me, please.
आज ही लोकप्रिय सितार वादक निखिल रंजन बैनर्जी का जन्मदिवस है. आज के दिन यानी 14 अक्टूबर 1931 को आपका जन्म हुआ. वे 20वीं सदी में भारत के प्रमुख सितार वादकों में से एक माने जाते हैं. निखिल रंजन बैनर्जी को सितार बजाना इनके पिता जितेंद्र नाथ बैनर्जी ने सिखाया. सितार बजाने की उनमें बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा थी. निखिल रंजन बैनर्जी ने 9 साल की उम्र में अखिल भारतीय सितार प्रतियोगिता जीती और जल्द ही ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी पर सितार बजाने लगे। शुरुआती प्रशिक्षण के लिए जितेंद्र नाथ के अनुरोध पर मुश्ताक अली खान ने निखिल बैनर्जी को अपना शिष्य बनाया। रेडियो पर निखिल बैनर्जी का सितार वादन सुनने पर अलाउद्दीन खान ने उन्हें अपना शिष्य बनाना स्वीकार किया। उन्होंने उस्ताद अली अकबर खान से भी शिक्षा प्राप्त की। निखिल रंजन बैनर्जी को कला के क्षेत्र में पद्म भूषण, पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं उन्हीं के द्वारा बजाए सितार की ये धुन।
Yes, and Sir Roger George Moore was born on this day in 1927. He was an English actor. He was the third actor to portray fictional secret agent James Bond in the Yawn Productions MGM Studios film series, playing the character in 7 feature films, Live and Let Die 1973, The Man with the Golden Gun 1974, The Spy Who Loved Me 1977, Moonraker 1979, For Your Eyes Only 1981, Octopussy in 1983 and A View to a Kill in 1985. Moore's 7 appearances as Bond are the most of any actor in the Yawn-produced entries. On television, Moore played the lead role of Simon Templar, the title character in the British mystery thriller series The Saint and also Arthur. James II was born on this day in 1633. He was the King of England, Scotland and Ireland from 1685 to 1688 and the last Stuart monarch in the direct male line.
आज ही प्रसिद्ध साहित्यकार वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य का भी जन्मदिवस है। वे असमिया भाषा के साहित्यकार थे। उनके द्वारा रचित उपन्यास ईआरओ इंगम के लिए उन्हें 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1979 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। वे साहित्य अकादमी दिल्ली और असम साहित्य सभा के अध्यक्ष भी रहे।
Usher Raymond Foer was born on this day in 1978. He's an American singer, songwriter and dancer who is recognized as an influential figure in contemporary R&B and pop music. Usher first released his self-titled debut album in 1994 at the age of 15 and rose to fame in the late 1990s following the release of his second album, My Way, in 1997. Let's listen in to his hit track, Standing Next to You, from his 2024 album, Coming Home.
और अब याद करेंगे जाने माने सितार वादक उस्ताद शाहिद परवेज खान को, जिन्हें आमतौर पर शाहिद परवेज के नाम से जाना जाता है। वे इटावा घराने की 7वीं पीढ़ी के प्रमुख वादक हैं। उन्हें विशेष रूप से उनके गायन के वाक्यांशों और राग के आशू रचनाओं की गुणवत्ता के लिए सराहा जाता है। उस्ताद शाहिद परवेज खान को पद्मश्री के अतिरिक्त संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, सुर श्रृंगार और कुमार गंधर्व सम्मान से सम्मानित किया गया। आप आकाशवाणी के शीर्ष ग्रेड कलाकार रहे। आइए सुनते हैं उसको उनके द्वारा बजाए ये सितार की धुन।
And Ralph Lauren was born on this day in 1939. He's an American fashion designer, philanthropist, and billionaire businessman, best known for founding the brand Ralph Lauren, a global multi-billion dollar enterprise. He has become well known for his collection of rare automobiles, some of which have been displayed in museum exhibits. He stepped down as the CEO of the company in September 2015, but remains executive chairman and chief creative officer. And also, Arthur, Gautam Gambhir was born on this day. He was one of the most complete batters in the game between 2008 and 2011 World Cup, opening successfully in all 3 forms. and he could be more aggressive than Virender Sehwag, played the kind of back-to-the-wall innings that would do Rahul Dravid and VVS Lakshman proud. He is currently the coach of the Indian cricket team.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए अतहर सईद और अभिषेक मुखोपाध्याय को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। नमस्कार।
नमस्कार।